संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करे। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैपन इत्यादि सब प्रकृति के कार्य है, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से अपना संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में है, अभी है और यहाँ है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती है, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए। यह सब का प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लेने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन माने अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्तियों का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात, विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूं। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वैसा रख नहीं सकता, जितने दिन रखना चाहूं उतने दिन रह नहीं सकता, और जैसा सबल बनाना चाहूं वैसा बन नहीं सकता। ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि ये मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, ये परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं। परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकती। तीसरी बात, यदि मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु ये मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करे ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा के बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारी श्रद्धा के बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते हो तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके, कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके, परंतु अभी तक हमारा उद्धार तो नहीं हुआ है। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सन्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की है, जो उनके सन्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी है, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं, हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाए, सन्मुख हो जाए, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं, पर ये तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही स्वयं का पतन किया है, इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वो स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूं, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध ये जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर ये नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग है उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप अपना उद्धार कर सकता है। नात्मानम अवसादयेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उसको महत्व देकर उसका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है, पर विचार करके देखें कि वह स्वयं बड़ा हुआ कि धन पद अधिकार आदि बड़े हुए, स्वयं चेतन और एक रूप होते हुए भी इन प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मी वे यात्मनो बंधु, ये आप ही अपना बंधु है, इसके सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं, अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है, यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए वह स्वयं ही अपना बंधु है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते, यह नियम है। आत्मी वेदी पुरात्मन है, ये आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है, इसके सिवा इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है, ये शरीर इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही उसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य यह है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। श्लोक के उत्तरार्ध में दो बार एव पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध न मानने से यह आप ही अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है। परिशिष्ट भाव, अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, पतन भी दूसरा नहीं करता। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। 13 का 21वां, गुरु संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सन्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य इनको स्वीकार न करे तो ये कैसे उद्धार करेंगे, नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा, जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की होनी चाहिए, खुद की भूख न हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का। ऐसे ही खुद की लगन न हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु भी होते आए हैं, भगवान के अवतार भी होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसे सिद्ध होता है कि हमने उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु है। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरों को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्वज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, क्योंकि आसक्ति उसी ने की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना चाहिए। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे। अतः उद्धरेद आत्मना आत्मानम का तात्पर्य है कि दूसरों में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसको दूर करने की चेष्टा करे, अपने को ही उपदेश देवे। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपना शासक बने।